Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
So, Vedanta ka kaam ye batana hai. कि बाहर ढूंढने जाओगे तो उसकी इति कहीं नहीं मिलेगी आपको, आपके पंख भी नहीं है जो इस धरती को छोड़ करके उड़ जाओ कहीं। वो काकभूषुंडी जी महाराज उड़े, बोले कहां तक उड़ा, कि जह लगी गति मोर, जहां तक मेरी गति थी मैं उड़ता चला गया, उड़ता चला गया। लेकिन इस ब्रह्मांड का तो कहीं पता चला नहीं। सप्तावरण भेद कर, सात आवरण मैंने भेद कर दिए, जैसे ये सात कोश एक शरीर में है ऐसे ही सृष्टि में भी सात आवरण है। तो उन सातों आवरणों को भेद करके जब मैं पहुंच गया तो, लेकिन राम ने देखा वान, लेकिन राम जी तो मुझे कोई दूसरे दिखाई पड़े नहीं, सब जगह कहीं राम अवतार किसी रूप में हो रहा, कहीं किसी रूप में हो रहा, कहीं किसी रूप में। और पीछे फिर के देखें तो उनकी वही हाथ जो पकड़ने के लिए चलाया था वो हाथ भी दिखाई देता था। पीछे देखो तो हाथ और आगे देखो तो राम। अब ये समझ में नहीं आया कि राम का हाथ है कि आगे वाला राम। तो मेरी बुद्धि जो है वो व्याकुल हो गई। तब वो भगवान को फिर उन्होंने श्वास निकाला और मैं उनके श्वास से बाहर आ गया। यही है ना रामायण में जो कथा है। अब वो भगवान ने फिर क्या कहा जब वरदान दिया, कि जो तैने बाहर देखा ये तो मेरी माया थी, और जहां तक तेरी गति थी ये तेरा पुरुषार्थ था। अब समझ, माया संभव ब्रह्म अब न व्यापी है तोय, जाने सु ब्रह्म अनाद अज अगुण गुणा कर मोय। अब मेरा आशीर्वाद है कि तुझको मेरी माया से उत्पन्न होने वाला जो बाहर भीतर का भ्रम है कि बाहर कोई और है और भीतर कोई और है, ये भ्रम तुझे अब नहीं व्यापेगा। बोले क्यों, अब क्या बात हो गई, कि जाने सु तेने जान लिया, किसको, मुझको। क्या जाना, कि ब्रह्म, तेने मुझको ब्रह्म जान लिया, अनादि अज, मैं अनादि हूं अजन्मा हूं, अगुण मैं निर्गुण हूं, और गुणाकर ये गुण भी सब मेरे में ही दिखलाई पड़ रहा है। ये संपूर्ण दृष्टि प्रदान करने का तरीका है। अब वो दृष्टांत में इतिहास के द्वारा बता दिया और उपनिषदों में सीधी सीधी बात बोलते हैं। उपनिषदों के अधिकारी जरा प्रबुद्ध वर्ग होता है और पुराणों का कथाओं का अधिकारी सामान्य आदमी होता है। तो तस्यैव एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य, तो ये अन्नमय कोष का आत्मा, अन्नमय पुरुष, और अन्नमय पुरुष का आत्मा प्राणमय पुरुष। और बोले ये आत्मा माने तो मैं होता है, तो बोले हां, पहले मैंने माना कि मैं अन्नमय पुरुष हूं, अब मैं मान रहा हूं कि मैं प्राणमय पुरुष हूं। मैंने एक कदम भीतर की ओर हम आ गए। अब बोले कि और चलो आगे, तो इसके बाद फिर ये मनोमय आता है, मनोमय कोश। नाम तो आपको याद हो ही गए हैं। तो प्राण के बाद मन आता है। तो अब इसकी भी विज्ञान जो इसमें मतलब प्रणाली जो है इसकी वो भी समझनी चाहिए ना। मन जो है ये आत्मा और इंद्रियों के बीच की स्थिति है, मन माने अंतःकरण समझ लो। ये इंद्रियां तो बाहर के विषयों को देखती हैं, पकड़ती हैं, लेकिन क्यों पकड़ती हैं? क्या इंद्रियां भोग करती हैं? इंद्रियां तो बाहर के विषयों को लेकर के जीवात्मा जो भोगता है उसको जाकर के सुपुर्द कर देती हैं। राजा साहब, ये आपका भोग है। शंकराचार्य भगवान ने यही उपमा दी है, बोले जैसे वैश्य लोग राजा को कर देते हैं, ऐसे ही ये जो इंद्रियां और प्राण हैं, ये कर के रूप में विषयों के भोग को भोक्ता के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब ये प्रस्तुत करने में भी अंतःकरण चाहिए, तब प्रस्तुति हो सकती है। अंतःकरण शब्द का महाराष्ट्र ने जो अर्थ किया है, वो कहते हैं अंतःकरण माने भीतर करने का यंत्र। अंतः क्रियते, बाहर की चीज को भीतर करने का जो यंत्र है हमारे शरीर में, उसको अंतःकरण बोलते हैं। इंद्रियां तो बाहर की ओर ही देखती हैं, अब बाहर का ये रूप विषय हमारे भीतर कैसे पहुंच गया? अगर मन ना हो, अंतःकरण ना हो, तो ये आत्मा तक पहुंच नहीं सकता। तो अब अंतःकरण में इंद्रियां अंतर्मुखी नहीं होती हैं, मन ही अंतर्मुखी होता है। वो तो जैसे वो होती है ना बैटन रिले रेस जो होती है, तो उसमें अपनी अपनी पार्टी वाले खड़े हो जाते हैं चार जगह पे और दौड़ते हैं, तो डंडा होता है हाथ में उनके में, तो वो भाग के गए और अपने दूसरे साथी को डंडा पकड़ा दिया, फिर वो भागा और उसने अपने अगले साथी को पकड़ा दिया। तो ये तो ऐसा रिले रेस चलती है। तो यहां भी इंद्रियां जो है ये मन को पकड़ा देती हैं, मन जो है वो बुद्धि को पकड़ा देती है, बुद्धि जो है वो चित्त को पकड़ा देती है, और चित्त जो है उसे भोक्ता के सामने प्रस्तुत कर देता है, तब जाके हमें वो भोग प्राप्त होता है। ये ऑटोमेटिक क्रियाएं अपने आप चल रही हैं। ज्ञान में कुछ बनाना नहीं है, जो हो रहा है उसको अर्थ ग्रहण करना है कि कैसे हो रहा है। तो अंतःकरण माने जो बाहर के ज्ञान को, वस्तु को भीतर कर दे, उसको बोलते हैं अंतःकरण। अब अंतःकरण की दो मुख्य वृत्तियां हैं, एक मन और एक बुद्धि। मन का, अंतःकरण का जो बाहरी हिस्सा है वो तो मन कहलाता है, और जो उसका भीतरी हिस्सा है वो बुद्धि कहलाता है। एक ही अंतःकरण है, ये बाहर भीतर का भेद कैसे किया? बोले अंतःकरण का जो हिस्सा इंद्रियों के साथ मिल जाता है वो तो मन कहलाता है, और जो आत्मा के साथ मिलता है वो उसका भीतरी हिस्सा कहलाता है, वो बुद्धि कहलाती है। अब समझ लो, जैसे मान लो कोई पत्नी है, तो उसकी पहुंच तो बेडरूम में है नारायण, और जो नौकर चाकर हैं उनकी पहुंच कहां है? तो बोले उनकी पहुंच तो बाहर के जो है वहीं तक है। तो ये बुद्धि जो है ये आत्मा की रानी है, पत्नी है। तो बुद्धि की पहुंच तो आत्मा तक है, और ये मन नारायण, इसको व्याकरण में नपुंसक बोलते हैं। तो ये पहले हरम जो होते थे इनके राजाओं के, उसमें ये हिजड़े लोग रखे जाते थे, क्योंकि पुरुषों को रख लें तो गड़बड़ करेंगे, तो हिजड़े लोगों को रखते थे। उनका काम यही था कि बाहर की बात भीतर, भीतर की बात बाहर। कोई सामान मंगाना हो तो सामान ले आओ, कोई सूचना देनी हो तो सूचना दे आओ, बस यही काम था। तो ये मन जो है ना, ये नपुंसक है, इसको ये हिजड़ा है, ये दोनों तरफ ताली बजाता है। हिजड़े तो ताली बजाते हैं ना, इंद्रियों किसी भी बोलता है और बुद्धि की रानी किसी भी बोलता है, आत्मा की तो कभी बोलता ही नहीं है, क्योंकि राजा से तो डरता है, राजा के पास गया और खत्म हुआ। खैर, तो ये मन का अंतःकरण के दो हिस्से हुए, एक बाहरी हिस्सा जो इंद्रियों के साथ रहता है और एक भीतरी हिस्सा जो आत्मा के साथ रहता है। भीतरी हिस्से को बुद्धि बोलते हैं और बाहरी हिस्से को मन बोलते हैं। तो अब प्राण तक तो आ गए ना हम, अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश, अब प्राणमय कोष के और भीतर चलो, माने इसको सत्ता स्फूर्ति कौन दे रहा है, ये क्रिया जो हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है। तो एक नियम है, जानाति इच्छति करोति, पहले जानते हैं फिर इच्छा करते हैं फिर कर्म करते हैं। अब ये सारा टीवी पे और विज्ञापन का जितना योग है ना आजकल, आप कोई साबुन देखते थोड़े ही हो, लेकिन टीवी पे आपने साबुन की शक्ल देख ली, उसके गुण का बखान देख लिया, बोले अब के तो बस यही साबुन लाना है। तो वो तो सिर्फ ज्ञान उत्पन्न करते हैं आपके, जाना थी उससे इच्छा अपने आप पैदा हो जाती है, और जब इच्छा पैदा हो गई तो फिर जाके बाजार से खरीद लाओगे। जानाति इच्छति करोति, ये तो वेदांत का सिद्धांत है, और इच्छति जानाति करोति ये आज का सिद्धांत है। बोले इच्छा करो, अज्ञान की भी इच्छा करो, और कभी कभी गुस्सा भी आता है और खीज भी होती है। हम लोग कितनी बुद्धि का अपव्यय करते हैं, इस ऑथर को पढ़ लें, इस ऑथर को पढ़ लें, इस ऑथर को पढ़ लें। अरे तो ऑथर को पढ़ के क्या भूसा भर रहे हो सिर में, क्या भर क्या रहे हो, आपकी कोई दिशा ही नहीं है। इसको भी पढ़ लें, उसको भी पढ़ लें, उसको भी पढ़ लें, उनके जो गलत संस्कार हैं वो भी आपके चित्त में घुस जाएंगे, उनको फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बोले नहीं, इच्छा करो, इच्छा से क्या होगा कि जानाति, आपका ज्ञान वर्धन होगा, वो ज्ञान वर्धन नहीं होगा, वो अज्ञान वर्धन होगा। दिशा एक रहनी चाहिए, चाहे ऑथर्स कितने भी अलग अलग हो जाए, जानाति इच्छति करोति। तो बुद्धि में तो होता है ज्ञान, और मन में होती है इच्छा, और इंद्रियों में होता है फिर कर्म, प्राण में और इंद्रियों में, इनमें होता है कर्म। तो अब समझ में आ गई ना इनके कोषों का जो विभाग है, विज्ञान में कोष जानाति, मनो में कोष इच्छति, और ये प्राण में और अन्न में कोष ये करोति। और पीछे नीचे से चलोगे तो प्राण में अन्न में कोष करोति, मनो में कोष इच्छति, और विज्ञान में कोष जानाति। अब जानने में बस इतनी बात रह जाएगी कि आप परमात्मा विषय ज्ञान जानते हो या इंद्रिय विषय ज्ञान जानते हो। अच्छा, इच्छा का यह स्वभाव है कि वो वस्तु को देख करके इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वस्तु तो जड़ है, वस्तु के गुण सुन करके इच्छा होती है और उसके अवगुण सुन करके उसे उपरति हो जाती है। तो केवल श्रवण से इच्छा का उदय हो जाता है, इसलिए मनोमय कोष को श्रवणमय कोष कहा है। और श्रवण का मतलब ज्ञान का श्रवण, और ज्ञान का मतलब वेद, और वेद का मतलब अपने यही चारों वेद जो हैं, यही वेद नहीं, संसार की जितनी विद्याएं हैं वो सब का सब वेद ही है। ये तो हम लोगों की मतलब उदार इतनी दृष्टि, महाराष्ट्र ऐसे ही बोलते थे कि वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है, वो उसमें सबके लिए, सब कालों के लिए, सब परिस्थितियों के लिए, जब से सृष्टि हुई है तब से और जब तक रहेगी तब तक सब प्रकार के ज्ञानों का उसमें सूत्रपात है। उसमें से निकालने वाला चाहिए कोई, यही ऋषियों की बुद्धि होती है। तो इसलिए इस मनोमय कोष को वेद में कोष कहा जाता है। ये श्रवण प्रधान है। तस्मात् वाये तस्मात् प्राणमयात् अन्योवंतर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः सेवा एष पुरुषविधः एव तस्य पुरुषविधतामन्वयम् पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋक्दक्षिणपक्दक्षिणः पक्षः सामुत्तरः पक्षः आदेशवात्मा अथर्वांगिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येषो श्लोको भवति। कहते हैं उस प्राणमय कोष के भीतर और उस प्राणमय कोष को सत्ता स्फूर्ति देने वाला एक और कोष है जिसको मनोमय कहते हैं। तेनैष पूर्णः, उसके द्वारा ये पूर्ण है, माने मनोमय कोष के द्वारा प्राणमय कोष पूर्ण है। जैसे कल आपको बताया था ना, सांचे में जैसे जो द्रव्य डाल दीजिए तो उसकी शक्ल वैसी हो जाती है। तो ये स्थूल जो शरीर है ये तो सांचा हो गया। अब इसमें आपने अपने आप को डाल दिया, माने अन्न में पुरुष बन गए। तो अब आप क्या है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं लंबा चौड़ा हूं, मोटा हूं, ताजा हूं, काला हूं, गोरा हूं, ये सब मतलब जो शरीर के गुण है ये सब के सब सांचे उसमें आ गए। अब बोले और भीतर चले तो मैं प्राणमय पुरुष हूं। तो प्राणमय पुरुष की क्या लंबाई चौड़ाई है, आकृति है? तो बोले जो अन्नमय की थी वो इसकी है। अब कहते हैं मनोमय की क्या है? तो बोले जो प्राणमय की थी वो मनोमय है, क्योंकि वो अब उसके भीतर पड़ा हुआ है। तो असल में तो सब ज्ञान ही है। अब बच्चे को शुरू में कलर्स का ज्ञान कराया जाता है ना, बोले ये क्या है कि ये ग्रीन है। अब आजकल तो अंग्रेजी में ही बताते हैं सब बोले ये रेड है। अच्छा भाई, कभी उसने ये प्रश्न किया कि रेड क्या होता है? और देख लिया ऐसा है, वो दिमाग में चढ़ गई, नाम उसका रेड है। अब जहां कहीं वो वैसा रंग देखेगा वो रेड रेड चिल्लाने लगेगा। तो ये बताओ वो लाल हुआ क्या? रेड जिसको आप बोल रहे हो वो क्या है? तो ज्ञान में एक संस्कार के अलावा चीज क्या है? ज्ञान के एक संस्कार का नाम रेड है, दूसरे संस्कार का नाम ग्रीन है, तीसरे संस्कार का नाम ब्लू है। ऐसा हो तो लंबा है, ऐसा हो तो चौड़ा है, ऐसा हो तो स्त्री है, ऐसा हो तो पुरुष है। ये सब ज्ञान के ही आकार हैं। ज्ञान में संस्कार, ज्ञान में आकार नहीं होता है, संस्कार से ही वो आकार मय मालूम पड़ने लगता है। तो तेनैष पूर्णः, उसके द्वारा, मनोमय कोष के द्वारा ये पूर्ण है। सेवा एष पुरुषविदः एवो तस्य पुरुषविदतामन्वयम् पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः। अब इसके अंगों की कल्पना जैसे सब कोशों में की है, ऐसे ही इसके अंगों की भी कल्पना करते हैं। तो कहते हैं कि यजुरेव शिरः, यजुर्वेद जो है वो इसका शीर्ष है। वेद शब्द हो गया ना, तो वेद में चार किसी से पूछा कि तुमने वेद पढ़ा है? तो बोले हां पढ़ा है। कि क्या पढ़ा है? कि वेद चार होते हैं। कि कौन कौन से चार होते हैं? ये तो मुझे याद नहीं है लेकिन वेद चार होते हैं। अब हम लोग भी जो है वेद की दुहाई तो देते हैं लेकिन वेद के दर्शन ही नहीं करते हैं। हमारे आश्रम में जो है वेद छपे हुए रखे हैं, महाराज श्री तो कभी कभी वहां बैठ के उसको पाठ कर लेते थे, थोड़ा बहुत कभी कभी बैठ जाते थे। और अब तो वो ढका रहता है, किसी को ये भी नहीं मालूम है कि क्या है ये, पुराने लोगों को ही मालूम है कि ये वेद की पुस्तक है। और वो टेबल बना रखी है ना, उसी पे बाल्टी रख देते हैं, उसी पे सब कुछ रख देते हैं। क्या कर रखा है वेद की ये दुर्दशा ना। तो वेद जो है उसको कम से कम देख लो, दर्शन करो, देखने का तो पुण्य होता है, और क्या नाम है अगर उसका पाठ कर ले तो फिर तो महापुण्य हो जाएगा, और उसका अर्थ आगम कर ले तब तो फिर कल्याण ही हो जाएगा। अच्छा, उपनिषद भी तो वेद ही है, तो उपनिषद का ही दर्शन कर लो। तो उपनिषद के तो नाम से ही लोग चौंक जाते हैं ना। ये उपनिषद विद्या है तो ये बुद्धि में ही रहती है, मनोमय में तो इसका उच्चारण रहता है। देखो जैसे मैंने कहा घट, घड़ा, तो आपका मन किस रूप में बदला, घट घट, घा के साथ घा वृत्ति उदय हो गई, टा के साथ टा वृत्ति उदय हो गई, फिर दोनों मिल गई तो घट हो गया। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने घड़ा देखा है, अच्छा बच्चे के सामने घट बोल दो तो घट तो उसके वृत्ति बन जाएगी घट, लेकिन घट होता क्या है ये उसे बताना पड़ेगा, तब उसके मन में बात वो आएगी। तो ये मनोमय कोष में और विज्ञानमय कोष में जो अंतर है वो ये है कि मन भी तदाकार होता है शब्द के, तदाकार शब्द तो प्राणमय कोष में है, और उसकी जो वृत्ति बनती है शब्द के अनुसार वो मनोमय कोष में है, और उसकी जो अर्थाकार वृत्ति बनती है वो विज्ञानमय कोष में है। ये इनका सूक्ष्म अंतर है। तो अगर आपको वेद में श्रद्धा ही नहीं है तो आप क्यों वेद पढ़ोगे और क्यों उसका जिक्र करोगे, क्यों सुनोगे? तो कहते हैं कि ये यजुर्वेद जो है यही उसका सिर है, तस्येव यजुरेव सिरः। तो यजुर्वेद को ही क्यों लिया? तो बोले यजुर्वेद के मंत्रों से ही यज्ञ होता है, और इसमें वो लगाते हैं स्वधा स्वाहा स्वधा वषटकार, ये सब जोड़ करके फिर वो यज्ञ कराया जाता है। अच्छा यज्ञ तो हो और उसमें भगवान की स्तुति न हो, ऐसा भी नहीं होता है। तो जो स्तुति करने वाले मंत्र हैं वो ऋग्वेद के होते हैं, और जो स्वाहा करने वाले मंत्र होते हैं जिनसे आहुति डाली जाती है वो यजुर्वेद के होते हैं। अच्छा और बोले कि वेद पढ़े जन बट समुदाय, तुलसीदास जी ने चुटकी ली, बोले कि ऐसी आवाज हो रही थी मेंढकों की वर्षा ऋतु में, मानो ब्रह्मचारी लोग जो है वो वेद का पाठ कर रहे हो। तो हमारे भीतर गले से जो लोग वो ऐसी आवाज हो जाती है जैसे स्टेशनों पर चाय वालों की आवाज हो जाती है ना,
चाय
ना। अब वो हो जाती है ऐसी, तो वेद पढ़ने वालों की भी ऐसी आवाज हो जाती है। तो वहां उपमा दी मेंढकों से, बोले मेंढक टर टर कर रहे हैं जब मानो वेद पढ़ रहे हो। तो अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो न तो आप वेद का दर्शन करोगे, तो ये जो मतलब खाली वेद मंत्र ही पढ़ते रहें और उसमें कुछ हल्की फुल्की बात ना हो, मनोरंजन की बात ना हो, तो उसमें आनंद की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसलिए उसके लिए सामवेद के मंत्रों का पाठ किया जाता है। ये सामवेद जो है ये वेद की सांगीतिक विद्या है। ये सब वेदों का उच्चारण एक सा नहीं होता है, ये सीखना पड़ता है जो इसके पंडित लोग हैं। तो कहां ऊंचा ले जाना है, कहां नीचा ले जाना है, तो ये सब वेदों को मिला करके यज्ञ संपन्न होता है। तो यजुर्वेद जो है ये तो उसका सिर है, यजुर्वेद, और ऋक दक्षिणा पक्षा, और ऋग्वेद जो है उसका दायां पंख है, माने स्तुति परक जो मंत्र है, और साम उत्तरा पक्षा जो मनोरंजन के लिए गा करके बोले जाते हैं। ये इसको महाराज जी तो दोष बताते थे, पाठ करने गा के पाठ नहीं करना चाहिए। तो उसमें मन तो लगता है पाठ करने में, गा के पाठ करो, लेकिन वो अपने गलेबाजी का स्वाद ज्यादा आता है, अर्थाकार वृत्ति नहीं बनती है। तो अब बोले ये तो यज्ञ तो हो गए, सामवेद भी हो गया, आदेश आत्मा, अब अगर ऐसे भी कर लो ऐसे भी कर लो, कोई जीवन के जीने की विधाई ना हो तो क्या होगा? तो बोले नहीं, उसके लिए भी वेद है। वो कौन सा वेद है? कि जो ब्राह्मण भाग है उसी को आदेश बोलते हैं, ये करो और ये मत करो, बस अभी पूरा करता हूं। तो ये धर्माधर्म का जो जितना विभाग है वेद का, ये आदेश कहलाता है, ये ब्राह्मण भाग में है। और ये सब तो हो नारायण और अशांत हो जाए आदमी, तो थोड़ी देर शांति से भी बैठना चाहिए, उसके लिए कौन से मंत्र हैं? तो बोले वो अथर्ववेद है, इसकी चर्चा कल करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।